नमस्कार भारत, तारीख 29 जुलाई दिन शनिवार। मैं हूं विनीत खरे। नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा?
जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, उनको कोई इंटरिम 45 रोज के लिए वजीर आजम बनाया जाएगा।
चलेंगे पाकिस्तान, जानने की वहां के अखबार इस बारे में क्या कह रहे हैं। गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंगलुरु भेजा, जानेंगे ताजा हाल। भाजपा से गठबंधन पर नीतीश कुमार कितने दबाव में हैं?
जो 2013 के पहले जो नीतीश कुमार का कद और रसूख था, वो 2017 में नहीं होने वाला।
साथ ही सुनिएगा तेजस्वी यादव से एक खास बातचीत, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे से पाकिस्तान में राजनीतिक संकट छाया हुआ है। कोर्ट ने शरीफ को 2013 के आम चुनावों में दायर किए हलफनामे में दुबई की एक कंपनी से हुई आय का खुलासा न करने का दोषी पाया। हालांकि शरीफ ने जाँच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कुछ भी गलत किए जाने की बात से इनकार किया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ के नाम का ऐलान किया। अब इस पद पर रेन्स प्राइबस की जगह होमलैंड सिक्योरिटी के पूर्व सेक्रेटरी जनरल जॉन कैली लेंगे। यह ऐलान व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंथनी के उस आरोप के बाद हुआ जिसमें उन्होंने रेन्स पर मीडिया में जानकारियाँ लीक करने का आरोप लगाया था। संयुक्त राष्ट्र अमरीका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरी बार परीक्षण किया है। जापान के जल क्षेत्र में गिरने से पहले ये मिसाइल 3000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 45 मिनट तक हवा में रही, लेकिन रूस ने वाशिंगटन और सियोल के इस आंकलन से असहमति जताते हुए कहा है कि ये मीडियम रेंज की मिसाइल थी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस मिसाइल परीक्षण को अपने देश के लिए खतरा बताया। इस परीक्षण के बाद अमरीका और दक्षिण कोरिया ने एक साझा मिसाइल अभ्यास किया। हमारी सरकार इस मिसाइल परीक्षण की कड़े शब्दों में निंदा करती है। यह साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के प्रस्ताव का उल्लंघन है। यह विश्व शांति के लिए खतरे की बात है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बीते कुछ वक्त से ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई के केंद्र में रहा 11 महीने का चार्ली गार्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनुवांशिक दुर्बलता की बीमारी से जूझ रहे चार्ली को उसके माता पिता इलाज के लिए अमरीका ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने इससे इनकार किया। डॉक्टरों का कहना था कि चार्ली का बचना संभव नहीं है। चार्ली की मौत पर पोप फ्रांसिस समेत ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने दुख जताया है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर की सुपरमार्केट में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। हैम्बर्ग के गवर्नर ओलाफ सोल्स ने कहा कि संदिग्ध शरणार्थी था और मन में नफरत के चलते उसने इस हिंसक घटना को अंजाम दिया।
Ein junger Mann, eine männliche Person hat einen Edeka-Markt hier in der Fuhlsbüttler Straße betreten.
ये संदिग्ध सुपर बाजार में दाखिल हुआ, उसने दुकान में मौजूद कई लोगों पर चाकुओं से हमला किया और वहां से फरार हो गया। रास्ते में ये हमलावर कई लोगों पर हमला करता हुआ गया। इस हमले में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हैम्बर्ग पुलिस के प्रवक्ता टीमोजेल के शब्द। अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्रबंधन यानी FDA का कहना है कि वो सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा करने की वजह नशे की लत को कम करने की कोशिशें हैं। NDA ने यह भी कहा कि वो पारंपरिक सिगरेट पीने वालों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ मोड़ने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में उठापटक जारी है। 6 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उधर कांग्रेस के 32 विधायक गुजरात से शनिवार तड़के बेंगलोर पहुंचे। 9 अन्य विधायकों के भी बेंगलोर पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ये विधायक 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनावों तक बेंगलोर में ही रहेंगे। ब्राजील की सशस्त्र सेनाएं रियो डी जनेरियो शहर में संगठित अपराध के खिलाफ करीब 10,000 सैनिकों को तैनात करने जा रही है। ये सैनिक स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स केस में अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद नवाज शरीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया। नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नया चेहरा सरकार को लेकर कहां तक चल पाएगा और आगे नवाज शरीफ की राह में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से बात की।
देखें, कल 12 बजे दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने जब से फैसला सुनाया है तो उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई सरकार है और ना कोई जो काबीना है, कैबिनेट है, वो एग्जिस्ट करती है। उस फैसले के बाद वो सारे डिसॉल्व हो गए हैं, प्रधानमंत्री साहब भी वजीर आजम हाउस जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो हुकमरान पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, उनकी मुशावरत का सिलसिला आपस में जारी है और लगता ये है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास, एक बैठक बुलाई है इस्लामाबाद में, जिसमें अगले प्रधानमंत्री का जो है फैसला किया जाएगा। अभी तक पार्टी ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन जो इत्तला चल रही है और मीडिया में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि शायद जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ, उनको कोई इंटरिम जो अबूरी कुछ मुद्दत के लिए 45 रोज के लिए वजीर आजम बनाया जाएगा, जिसके बाद जो नवाज शरीफ के भाई हैं और वजीर आला थे पंजाब के शहबाज शरीफ, उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया जाएगा और वो जब कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जो चंद साबिक मंत्री थे नवाज शरीफ के, एहसन इकबाल समेत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा, ये इंटेंशन जाहिर की है कि सरकार तोड़ने या असम्बलियाँ तोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपनी मुद्दत जो जून 2018 में उनकी मुकम्मल होगी तो वो अपनी ये मुद्दत मुकम्मल करेंगे। तो इससे तो यही लगता है कि इंटरनल पार्टी के ही किसी नए बंदे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा।
जून 2018 तक ये आपको लगता है कि मौजूदा हालात में जो भी नया चेहरा होगा और जो जिस भी शक्ल में सरकार होगी वो टिक पाएगी?
देखें, मुश्किल तो बहुत होगी और जिस तरह के चैलेंजेस हैं और जिस तरह का शरीफ फैमिली ने पिछले साल दो साल हिसाब किताब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट में, उससे तो लगता है कि शायद शहबाज शरीफ भी सख्त निगरानी में होंगे और उनको भी देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज के लिए है वो ये है कि इलेक्शन तक इंतज़ार करने में लगता है कि उन्होंने ये बेहतर समझा है कि इलेक्शन तक हम इंतज़ार करें, पहले वक्त से इलेक्शन ना करवाएं, चुनाव ना करवाएं, ताकि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, जो इन्होंने वादे किए थे कि लोड शेडिंग, बिजली की जो कट हैं, पावर कट्स, वो ख़त्म करेंगे, वो मुकम्मल हो जाएं और फिर साथ में ये जो विक्टम वाला कार्ड है कि जी हमें विक्टम बनाया गया है और साजिश का शिकार हुए हैं, तो इसकी बुनियाद पर अगर वो इलेक्शन में जाएंगे तो ज्यादा कामयाब होंगे।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहाँ की फौज, वो कहाँ पर किस क्या स्टैंड लिया है और इस पूरे घटनाक्रम में वो कहाँ पर है?
जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से तो मुकम्मल खामोशी है और कोई सेना की तरफ से ट्वीट नया सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले दिनों जब एक मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी और उसमें ISI और MI के लोग भी थे, तो उस पर फौज ने ये कहा था कि जो मुल्क का कानून है और आईन है उसके मुताबिक जो उनसे रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं फौज वो पूरा कर रही है, तो जिस पर काफ़ी लोगों ने उन पर तनकीद भी की थी, लेकिन फिलहाल खामोश हैं। लेकिन आज जो चंद मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दबे दबे अल्फाज में कुछ इशारे तो किए हैं कि यहाँ फौजी आमिर आए, 12-13 साल हुकूमत सरकार करके गए, उनका कभी किसी ने एहतसाब नहीं किया, उनको कभी किसी ने अकाउंटेबल नहीं ठहराया, वो मुल्क छोड़कर चले गए, उनका किसी ने जवाब नहीं मांगा, ये हमेशा सियासी और सियासतदानों से ही कुर्बानियाँ क्यों मांगी जाती हैं, تو سعد رفیق جو ریلوے کے منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ جب بھی مسلم لیگ نواز آئے گی وہ اس طرح کے جو سیاستدانوں کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے کوئی ضرور قانون سازی کریں گے یا سیاسی پارٹیوں میں آپس میں اتفاق رائے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے۔
اسلام آباد سے یہ تھے ہارون رشید، اور پاکستان کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں آج صبح بتانے کے لیے اسلام آباد سے ہی احتشام الحق اس وقت ٹیلی فون لائن میں پر ہمارے ساتھ ہیں۔ احتشام الحق، بس چند منٹوں پہلے میری نظر ہندوستانی اخباروں میں پر پڑی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر میں آئے تھے، اور پہلے پننے پر نواز شریف چھائے ہوئے ہیں، اسلام آباد کے اخبار کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے جی، یہاں پہ بھی جتنے بڑے اردو کے، انگریزی کے اخبارات ہیں، سب نے بینر ہیڈ لائن جو ہے نا وہ نواز شریف کی برطرفی جو ہے نا اس کے بارے میں ہی ہے۔ مثلاً انگریزی کا سب سے بڑا اخبار ڈان ہے، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے، نواز شریف سٹیپس ڈاؤن ایز پرائم منسٹر آفٹر سپریم کورٹس ڈسکوالیفیکیشن ورڈکٹ۔ دوسرا اخبار ہے جی انگریزی کا، دا نیوز انٹرنیشنل، اس کی خبر ہے سپریم کورٹ آن فرائیڈے ڈسکوالیفائڈ نواز شریف فرام آفس اوور لاسٹ رننگ کرپشن الیگیشن۔ ایک اور خبر ہے اسی اخبار کی، شاہد خاقان عباسی لائکلی ٹو بی انٹرم پرائم منسٹر۔ اردو کا سب سے بڑا اخبار جنگ ہے جی، یہ لکھتا ہے اپنی بینر ہیڈ لائن میں، نواز شریف طویل عرصہ وزیر اعظم رہنے کا ریکارڈ نہ توڑ سکے، سپریم کورٹ کی طرف سے فوری برطرفی۔ ایک اور اس کی خبر ہے، کابینہ تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسی طرح جی انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے پاناما گیٹ ساگا اینڈ پرائم منسٹر سینٹ پیکنگ۔ دوسری خبر اسی کی اخبار کی ہے، پرائم منسٹر نواز شریف ریزائن آفٹر سپریم کورٹ آرڈر ٹو ڈسکوالیفائی ہم۔ انگریزی کا ایک اور اخبار ہے جی سامنے، بزنس ریکارڈر، یہ لکھتا ہے جی نواز شریف آفیشلی اسٹیپ ڈاؤن ایز پرائم منسٹر، کیبنٹ ڈیزالوز۔ اور دوسری خبر ہے جی پاناما کیس ورڈکٹ، سپریم کورٹ ڈسکوالیفائز فائنانس منسٹر اسحاق ڈار۔ اردو کا ایک اور اخبار ہے ڈیلی ایکسپریس، یہ لکھتا ہے نہ صادق نہ امین، نواز شریف نہل، سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ۔ اردو کا ایک اور اخبار ہے، یہ لکھتا ہے دنیا اخبار، یہ لکھتا ہے وزیر اعظم نہل، کابینہ تحلیل، نواز شریف، حسین نواز، مریم نواز، صفدر کیپٹن کے خلاف 6 ہفتوں تک نیب میں ریفرنس۔ اسی طرح اسلام آباد کا ایک اخبار ہے ڈیلی آبزرور انگریزی کا، یہ لکھتا ہے نواز شریف ریزائن اوور پاناما پیپر ورڈکٹ۔ یہ سارے اخبارات جو ہے جی اردو انگریزی سب کی ہیڈ لائن جو ہے نا وہ
نواز ہی
چل رہی ہے، ساتھ ہی جی جی نواز شریف سے بھری ہوئی ہے۔ جی ہاں
جی، کون اگلا پردھان منتری ہوگا؟ دیش کی باگ ڈور ابھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیبنٹ کا کیا رول ہے، کہاں ہے؟ تو اس پر کوئی قیاس لگ رہے ہیں یا اخبار کچھ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں جی، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں چھپی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو جو شہباز شریف چھوٹے بھائی ہیں، چیف منسٹر پنجاب، بڑے صوبے کے چیف منسٹر ہیں، ان کا نام تو نہیں آ رہا تھا پہلے سے، اس لیے کہ کیونکہ پی ایم ایل این کی جو مین سٹے ہے وہ پنجاب ہی ہے، اور شہباز شریف صاحب اگر وہاں سے ہٹائے جاتے ہیں تو ان کے لیے پارٹی کے لیے مشکلات ہوگی۔ اب کیونکہ دو بڑے نام جن کا نام آ رہا تھا، خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال، ان کے اقامے آ گئے ہیں سامنے کہ یہ یو اے ای میں کام کرتے رہے ہیں، لہٰذا ان کا اب چانس نہیں ہے۔ اب تین لوگوں کا نام آ رہا ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق کا نام آ رہا ہے، خاقان عباسی، شاید خاقان عباسی یہ منسٹر ہیں اس وقت، ان کا نام آ رہا ہے، اور ایک تیسرا نام ہے شہباز شریف صاحب کا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی شہباز شریف اگرچہ چیف منسٹر ہیں، ان کے لیے تو ذرا فوری طور پہ مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں لانے کے لیے ان کو ایم این اے کا الیکشن لڑوانا ہوگا، اس لیے انٹرم پرائم منسٹر کچھ دنوں کے لیے وہ شاید خاقان عباسی کا نام آ رہا ہے جو اس وقت پٹرولیم منسٹر ہیں، کہ وہ شاید بن جائیں گے۔ جی
اسلام آباد سے احتشام الحق، بہت شکریہ آپ کا۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 49, 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 6155, 7995, 9915 اور 11995 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
گجرات میں کانگریس کے کل 6 ودھائک کانگریس سے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور مانا جا رہا ہے کہ 8 اگست کو ہونے والے راجیہ سبھا چناؤں میں کانگریس کے احمد پٹیل کا راجیہ سبھا جانے کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے۔ احمد آباد سے انکر جین اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ انکر، بہار میں جو ہوا کانگریس کے ساتھ ہم نے دیکھا، گجرات میں بھی کانگریس سالوں سے ستا سے باہر ہے، تو یہ جو 6 ودھائک کا ایگزٹ ہوا ہے، باہر نکلے ہیں، کانگریس کے لیے کیا سنکیت ہے؟
کانگریس کے لیے گجرات میں استھتی کٹھن دکھ رہی ہے، لگ رہا ہے کہ جب کانگریس کے بڑے نیتا شنکر سنگھ واگھیلا پچھلے دنوں कांग्रेस से इस्तीफा दे बीजेपी में शामिल हुए थे, कहीं शायद पार्टी उनके उनके उनकी एग्जिट को समझ नहीं पाई है। और उसके बाद अब तक पांच विधायक कांग्रेस में शामिल हो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और कल रात कांग्रेस ने करीब 40 से करीब एमएलएओं को अलग अलग जगहों पर गुजरात से भेज दिया है, जिसमें माना जा रहा है खास करके बैंगलोर में। और ये जो पूरा मामला है कि 8 तारीख को जो राष्ट्रपति राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो पाए, क्योंकि जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई थी, लेकिन चूंकि राज्यसभा के चुनाव ओपन बैलेट है, इस वजह से कि वोट अगर कहीं बट ना जाए, इस वजह से एमएलएओं को बैंगलोर के पास एक रिसोर्ट में अब अगले 8 दिन तक रखा जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। तो लग रहा है
जी बैंगलोर में क्या होगा वो हम उसको बताने के लिए इमरान कुरैशी हमारे साथ ही इमरान के पास थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन अंकुर अगर आप बता पाएं ये जो अहमद पटेल के बारे में कयास लग रहे हैं कि भाई राज्यसभा जा पाएंगे कि नहीं, ये कितने सही है?
अब विनीत, अहमद पटेल है पिछले करीब 3 से 4 दशकों से गुजरात की राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखे हैं, और अब ये स्थिति है कि जब उन्हें गुजरात का किंग मेकर कहा जाता था कि कांग्रेस की राजनीति का, तो आज ये स्थिति है कि वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं। कई एमएलए कह रहे हैं कि अहमद, उन्हें डायरेक्ट फोन कर रहे हैं अहमद पटेल और कह रहे हैं कि भाई आप हमें वोट करिए। तो अब ये स्थिति उनके लिए कठिन लग रही है कि 8 तारीख को क्या वो इस चुनाव में वापस अपना 3 दशकों से बना हुआ दबदबा कामयाब रख पाएंगे, क्या वो वापस राज्यसभा में जा पाएंगे गुजरात से, ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जैन। और जो विधायक अहमदाबाद से, कांग्रेस के विधायक अहमदाबाद से बैंगलोर की तरफ उड़े, उनमें परेश धनानी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इमरान कुरैशी से।
ये हिंदुस्तान में दो गुजरातियों ने अंग्रेजों की हुकूमत से सल्तनत को आज़ाद कराया था, अब तू ही ताकत दे कि आने वाले दिनों में ये अंग्रेजों के वारसदारों की जो हुक्मशाही गुजरात में चल रही है।
ये थे परेश धनानी, और तू का मतलब ये तिरुपति जा रहे हैं, बालाजी की बात के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन्होंने उनका जिक्र किया था। इमरान कुरैशी, आप रात भर एयरपोर्ट पे थे, बैंगलोर एयरपोर्ट में आप देख रहे थे ये लोग आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक, बताएं क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे और कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे, क्या प्लान है वहाँ पे?
ये पहली जो पूरे विधायक करीब दो विमानों से बैंगलोर में उतरे, एक 2:30 बजे उतरी जिसमें 31 एमएलए आए, और उसके बाद एक 5:30 बजे उतरी जो करीब 9 एमएलए उतरे हैं उनके साथ विधायक। तो ये पूरे ईगलटन रिसोर्ट पे ले जाए गए हैं। यहाँ के जो बैंगलोर रूरल के जो एमपी हैं डीके सुरेश, जो जिनके भाई कर्नाटका के एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो अहमद पटेल के बहुत करीब हैं, तो उनके उनके कंट्रोल में है, मतलब उनको उनकी देखभाली वो कर रहे हैं, इन डीके सुरेश एमपी हैं वो लोकसभा के बैंगलोर रूरल से। और वहाँ में बोला गया है कि वो लोग शायद तिरुपति को ले जाएंगे वहाँ के दर्शन करवाने के लिए, शायद थोड़े लोग आज बालाजी के थोड़े लोग आज जाएंगे, शायद थोड़े लोग कल सुबह भी जा सकते हैं। मगर जैसी यहाँ की एक तरह की एक ट्रेडिशन हो गई है कि जब कभी महाराष्ट्र में एमएलए को कुछ होता है, तो जब कांग्रेस की सरकार को कुछ डर लगता है तो वो बैंगलोर आते हैं, और उनका एक तरीके का एक टूर हो जाता है, मतलब आज तिरुपति गए, वहां से नंजनगुड़ मंदिर गए, और वहां से रामेश्वरम लेके जाएंगे, शायद पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे इस वक्त। मगर अभी तो करीब 8 तारीख तक ये शायद बेस रहेगा ईगलटन रिसोर्ट, मगर उसके बाद वो कहाँ कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। अभी
कहा जाता है कि बालाजी के दर्शन करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, देखना होगा कि इस मामले में कांग्रेस के विधायकों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका बेंगलुरु से इमरान कुरैशी। और अब चलते हैं बिहार। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 2 दिन पहले 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश की भाजपा की अगुवाई में बनी एनडीए गठबंधन में दूसरी पारी है। पहली पारी में उन्होंने 17 वर्षों के बाद 2013 में खुद ही गठबंधन तोड़ लिया था। इस दूसरी पारी में क्या गठबंधन पर नीतीश का दबदबा 2013 के पहले की तरह होगा, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की नीतीश कुमार की दूसरी पारी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक अहम सवाल इस बहाने नीतीश कुमार के राजनीतिक कद के बारे में भी किया जा रहा है। क्या गठबंधन में उनका रुतबा और दबदबा वैसा ही होगा जैसा 2013 के पहले था? एनडीए के साथ पहली पारी में राजनीति से लेकर गवर्नेंस तक के मुद्दों पर उनका दबदबा साफ दिखाई देता था। नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आने देना इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से है। लेकिन 2017 में हालात दूसरे हैं और जानकारों का मानना है कि गठबंधन में नीतीश की हैसियत अब पहले वाली नहीं हो सकती। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन इसकी दो बड़ी वजह बताते हैं।
जो 2013 के पहले जो नीतीश कुमार का कद और रसूख था वो 2017 में नहीं होने वाला, और उसके दो कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्योंकि 2014 के बाद पूरे देश में बीजेपी का जो फेनोमिनल जो राइज है, और दूसरा है कि जो वैचारिक मुखरता है, उस कारण से न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी का कोई भी जो अलायंस है वो कंफर्टेबल नहीं है।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद बताते हैं कि अभी ऐसा समझा जा रहा है कि 1996 के मुकाबले 2017 में नीतीश ने भाजपा की शर्तों पर गठबंधन किया है, ऐसे में अभी उनके इम्तिहान का वक्त है।
आज उनकी परीक्षा है आइंदा डेढ़ साल पौने दो साल कम से कम लोकसभा इलेक्शन के पहले तक। ये ओल्डेस्ट सेकुलर अलायंस रहे हैं और 95-96 से रहे हैं, इनको आइडिया है डील करने का। बाकी लोग आए गए भाजपा के साथ, लेकिन ये ओल्डेस्ट हैं और ये शायद डील करना जानते हैं। अगर जान गए, कामयाब हो गए, तब तो ये एक इमर्ज कर जाएंगे, वरना इनको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो।
जदयू इससे इनकार करता है कि एनडीए में उनके नेता का कद घटा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि नीतीश अपनी कार्यशैली से अपनी हैसियत बरकरार रखेंगे।
और राजनीति में हैसियत कर्म से होता है, तो माननीय नीतीश कुमार जी की जो काम करने का तरीका है, क्षेत्रीय पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय सोच है, तो माननीय नीतीश कुमार जी की राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता भारतीय जनता पार्टी और हमारी सहयोगी पार्टी के लिए भी है। क्योंकि विकास का चेहरा है, सद्भाव का चेहरा है, बगैर तनाव पैदा किए समाज के सारे तबकों के विकास का मॉडल है, गवर्नेंस का मॉडल है, इसलिए हमें लगता है कहीं कोई तनाव नहीं है।
जानकार भी जदयू के इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर नीतीश कानून व्यवस्था को बेहतर कर सकें, रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकें और विकास के पैमानों पर अपनी पुरानी लकीर से बड़ी लकीर खींच पाएं, तो वे एनडीए में अपने पहले के रुतबे को फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन नई पारी में गौरक्षा के नाम पर होने वाले हिंसा की चुनौती भी उनके सामने आ सकती है। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
और बिहार में जारी राजनीतिक उथल पुथल पर हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव ने बात की बिहार के पूर्व डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव से।
दुख इस बात का है कि बिहार के लोगों को चीट किया गया। जो मैंडेट 2015 में जो मिला था वो महागठबंधन के लोगों को मैंडेट मिला था। आज वो तमाम लोग जिन लोगों ने वोट देने का काम किया, आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। और नीतीश कुमार जी ने जो धोखा दिया, ये बिहार की जनता देख रही है और जान रही है कौन गलत है और कौन सही।
नीतीश कुमार कहते हैं उन्होंने अपनी अंतर आत्मा को सुना, भ्रष्टाचार आपके खिलाफ
चार साल में चार सरकारें, कितनी अंतर आत्माएं हैं नीतीश कुमार जी की। कभी बीजेपी को भगाते हैं, कभी मांझी जी को भगाते हैं, लेकिन अगर कभी हमको छोड़ करके चला जाते हैं, तो कितनी अंतरात्माएं और इतनी जल्दी जल्दी अंतरात्माएं क्यों जगती है?
लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं जब भी सरकार में आते हैं।
बहुत अच्छी बात,
ये उनका आरोप है।
उनको तो पता ही नहीं था कि लालू जी पे केस चल रहा था। नीतीश जी को तो पता ही नहीं था कि लालू जी पे केस चल रहा था, वो आए और मिल गए। और भ्रष्टाचार उनपे जो मर्डर का केस है 302 के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर आर्म्स एक्ट,
उन्होंने
क्या
तो
उसपे उन्होंने
क्या इनकार किया,
क्या इनकार किया? एफिडेविट में देखी ना, जो नॉमिनेशन जो किए हैं नीतीश जी MLC का, उसका आप ऑनलाइन जाके एफिडेविट देख सकते हैं। उन्होंने खुद किया, हमने थोड़ी ना किया।
ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव।
BBC इंडिया बोल।
क्या बिहार में जनादेश का सम्मान हुआ? बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था, पर नीतीश कुमार ने इस गठजोड़ को तोड़ दिया। क्या उन्हें बीजेपी से हाथ मिलाने की बजाय नए चुनाव करवाने चाहिए थे? इस बार BBC इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 29 जुलाई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या फिर 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों की। अजीत दोवल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त चीन में हैं और कल उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हुई। इसी बैठक पर हमारे साथी संदीप सोनी ने बात की बीज में मौजूद पत्रकार सैबल दास गुप्ता से।
शी जिनपिंग के साथ जो बात हुई है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में हुआ है। ब्रिक्स का समिट था, सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें ब्रिक्स के रशिया से, साउथ अफ्रीका से और ब्राज़ील से सारे लोग आए थे और सारे कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे, तो उनके साथ एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ। तो वो तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन डोवाल साहब चाइनीज ऑफिसर्स को मिले और शी जिनपिंग को भी मिले और कई मीटिंग्स उनकी 1-to-1 हुई। कल उन्होंने 3 मीटिंग्स ऐसे किए जो 1-to-1 हुआ। और उस वक्त ऐसा ज्ञात होता है कि ये दोनों देश एक दूसरे की परिस्थिति समझने में कामयाब हुए। ये नहीं कि परिस्थिति में पूरी आ गई और जो बॉर्डर में झमेला हो रहा है वो खत्म हो गया, लेकिन कम से कम एक दूसरे को समझने लगे हैं और दूसरा आगे का कदम, आगे क्या करना है ये सोच रहे हैं।
लेकिन आप कह रहे हैं उस स्थिति जो बॉर्डर पर है, डोकलाम में है, जो भारत कहता है उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर ये जो फेस है इसको ये कितना महत्वपूर्ण है?
तो कम से कम बात हो रही है एक, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि चीन ने बार बार ये कहा था कि हम किसी प्रकार का बातचीत नहीं करेंगे जब तक भारत के ट्रूप्स डोकलाम से पीछा हट न करे। ये कहते हुए, बार बार कहते हुए भी, उसके बावजूद भी चीनी मंत्रालय के, विदेश मंत्रालय के लोग और स्टेट काउंसिलर वो उनको अलग से मिले डोवाल साहब को, और 1-to-1 मीटिंग हुई। ये नहीं कि सिर्फ ब्रिक्स की मीटिंग हुई, लेकिन 1-to-1 मीटिंग हुई और भारत की स्टैंड ऑफ को लेके चर्चा हुई। तो वो थोड़ा तो डायल्यूट किए हैं अपने पुराने स्टैंड से और उन्होंने संकेत भी किया है कि इसको वो रिजॉल्व करना या सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ये कल सॉल्व हो जाए। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि अगस्त 1 तारीख को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 90 वर्षगांठ की सेलिब्रेशन है। ऐसी हालत में अचानक से अगर कह दे कि जो कल हमारा, जिसको हम दुश्मन मानते थे, जो हमारी जमीन पर चला आया है, उसके साथ हमारी दोस्ती हो गई ओवरनाइट, तो ये सिपाहियों को, सोल्जर्स को समझाना बहुत कठिन होगा।
ये थे चीन की राजधानी बीजिंग के में मौजूद भारतीय पत्रकार सैबल दास गुप्ता। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे से पाकिस्तान में राजनीतिक संकट। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ के नाम का ऐलान किया। ये पद अब जनरल जॉन कैली संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमरीका और दक्षिण कोरिया का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का दूसरी बार परीक्षण किया है। बीते कुछ वक्त से ब्रिटेन में कानूनी लड़ाई के केंद्र में रहा 11 महीने का चार्ली गाल्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के सुपरमार्केट में हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोगों के घायल होने की खबर है। अमरीकी खाद्य एवं औषधि प्रबंधन यानी FDA का कहना है कि वो सिगरेट में निकोटीन की मात्रा को नियंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में एक तरफ जहां 6 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ 32 विधायकों के गुजरात से शनिवार तड़के बेंगलोर पहुंचने की खबर है। ब्राज़ील के सशस्त्र सेनाएं रियो डी जेनेरियो शहर में संगठित अपराध के खिलाफ करीब 10,000 सैनिकों को तैनात करने जा रही है। ये सैनिक स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद करेंगे। बीते साल ओलंपिक के बाद रियो में अपनाए अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार आप सुन रहे थे हमारे साथी विकास त्रिवेदी से। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दे अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ, लेकिन bbchindi.com पर 2400 घंटे सातों दिन हम हमेशा आपके साथ हैं।